ओम शांति, ओम शांति। हमने सुना है कि आप सभी 9:30 बजे से लगातार बैठे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, तपस्या जमा हो गई ना। कितना खाता आपका शक्तिशाली और जमा का बन गया, इस खुशी की ताली बजाओ। और ख्याल आता है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो जाएं बैठे बैठे, थोड़ा माताओं को, हाँ भाई भी भले घुटने थोड़ा सा तो कहते हैं, मुझे हिला दो जरा सा, थोड़ा सा प्यार कर दो मुझे भी, हाँ तो सारे अपने स्थान पे ही खड़े हो जाओ। और यहां से भी आपका दृश्य बहुत अच्छा लगे, बड़ा प्यारा लगे, क्योंकि आपका ये दृश्य सब तरफ जा रहा है। तो आप पहले प्यारे बाबा को निहारो, सामने बहुत प्यार से निहारो। आप तो सब स्वयं ही अपने आप में प्यार की मूरत हैं, देवियां हो, शिव शक्तियां हो, बहुत लाडली मीठी मीठी बाबा की माताएं, सेवाधारी कहें, विश्व कल्याणी कहें, जो भी कहें, भाग्यशाली आत्माएं हो, प्यार से निहारते रहो। और अब आप सब अपने राइट दाएं हाथ की तरफ टर्न कर जाओ, दाएं हाथ की तरफ टर्न कर जाओ, दाएं, पूरा नहीं मुड़ो, सिर्फ दाएं, हमारे इस तरफ, हाँ? और संकल्प करो, मैं आत्मा अपना जन्म जन्मांतर का बहुत ऊंचा भविष्य भाग्य जमा करने वाली विशेष और श्रेष्ठ आत्मा हूं। हर पल हर संकल्प में मेरा जमा का खाता बन रहा है। प्रवृत्ति में रहते, सब कुछ करते, घर की, सभी की संभाल करते, मैं कमल पुष्प धारी हूँ, कमल आसन पर बैठी हूँ। मेरा ये कितना सुंदर चित्र है, ऐसे ही लगता है कि मैं देवी समान शिव शक्ति कमल पर विराजित हूँ। अब भी आप सभी अपने राइट दाएं हाथ की तरफ टर्न करें, स्टेज की बैक, ये बाएं में कर गए जो हमारे सामने आया है, अपने दाएं हाथ को देखो और उधर ही टर्न करो, स्टेज की बैक, शिव बाबा उधर, लक्ष्मी नारायण, अपने भविष्य को देखो। अब आपके सामने श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जो आपके भविष्य, प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति, ग्रस्त आश्रम, ये मेरा भविष्य होगा जिसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। परिवार में रहते हम श्री नारायण, नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी, ऐसा हमारा ग्रस्त होगा जिसमें आश्रम अर्थात सुख शांति और पवित्रता होगी। यही मेरा वर्तमान है जिसमें मैं ऐसा बन रही हूं। अपने अंदर सर्व गुणों को लक्ष्मी समान, पवित्रता को 100% उस स्वरूप में आती जा रही हूं। ये कितनी खुशी की बात है। हर समय मेरी अंतरात्मा अंदर से कितनी हर्षित रहती है, कितना मेरा दिल प्यारे बाबा की तरफ आकर्षित और शुक्रिया गाता रहता है। वाह बाबा, आपने मुझे देवी श्री लक्ष्मी जैसा बनाया है, इतनी ऊंची पढ़ाई, ऐसा बनने की रोज पढ़ाते हैं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब फिर से आप अपने दाएं हाथ की तरफ ही मुड़ेंगे, ये आपका चक्र हो रहा है पूरा, चारों दिशाओं का, और सारे ग्लोब को सामने लाओ। यह दुनिया साकारी, जिसे हर मनुष्य इन नेत्रों से देखता है, जिसे आज साइंस ने घर बैठे भी हमें दूरदर्शन द्वारा इन स्थूल नेत्रों से देखने का ये बहुत अच्छा कलयुग अंतिम समय में साधन दिया, जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि अपने मन में वो शुभ भावनाएं रखकर कि दुनिया के कोने कोने की सब मनुष्य आत्माएं, चाहे किसी भी देश की, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी भाषा की, किसी भी रंग रूप वाली, किसी भी स्वभाव और संस्कार वाली, वो सदा सुखी रहे और हर आत्मा अपने पिता से, प्यारे शिव बाबा परम आत्मा से अपने जीवन में सुख और शांति अवश्य प्राप्त करे। सब परिचित होते जाएं, हो रहे हैं और होते जाएंगे, कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, ये हम सब की दिली ख्वाहिश है कि हर आत्मा अपने पिता से अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, सुख और शांति, ज्ञान और पवित्रता का अवश्य प्राप्त करे। अब आप फिर से अपने दाएं को टर्न करते मंच के समक्ष प्यारे बाबा के सामने हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं वतन से कि मेरे बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ, कितनी लगन में आगे बढ़ रहे हैं, सो का भी कल्याण कर रहे हैं और सारे विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। तो प्यारे बाबा को आप सभी अपने मुख से उतने ही प्यार से दिल से शुक्रिया करेंगे और कहेंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। एक बार और सब साथ मिलकर बोलो, और अब आप ताली बजाओ। और अब आप सिर्फ कुछ सेकंड अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, थैंक यू बाबा। अब बैठ जाओ। रिलैक्स हुए? रिलैक्स हुए? जो हुए वो हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ। वेरी गुड। अब आप सबका थैंक्स। तो आज हम प्रवृत्ति में कैसे परवृत्ति रखें, परवृत्ति की स्थिति बनाएं। आप सब कहते हो ना, प्रवृत्ति में रहते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, कहीं कहीं हम उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता, कभी कहते मन नहीं लगता, कभी कहते फंस जाते हैं, दोनों ही बातें करते हो, है ना ऐसा? कभी कहते हो मन नहीं लगता और कभी कहते हो फंस गए, बहन जी मैं तो चाहती नहीं थी, अब कर बैठी, हो गया, आ गया मोह थोड़ा, बच्चों का मानना पड़ गया, ऐसा ऐसा भी सोच लेते हो। मानना तो है ही, मानना ही चाहिए, रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या मानना है? तो दोनों ही बातें, दोनों ही ठीक नहीं, या और भी कोई होंगी अक्सर, क्योंकि जो आप सबसे आती है बातें उसके सार रूप में आपको कह रही हूं, इससे ही जुड़ी हुई, इसी के आसपास की कई बातें सबके सामने भिन्न भिन्न रूप से आती हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है, ये बाबा की ही हमें श्रीमत मिली, हमें मना, आप सब प्रवृत्ति में रहते हो, हम आश्रम की प्रवृत्ति में रहते हैं, बाबा की सेवा जो मिली है, जिम्मेदारी जो मिली है, प्रवृत्ति उसी को ही कहेंगे ना, हाँ, एक साथ जो रहते हैं, इसलिए गृहस्थी नहीं कहते। तो बाबा आप सभी को बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे अपनी प्रवृत्ति संभालो, प्रवृत्ति को छोड़ने की नहीं मिली, यही तो कमाल है, इसीलिए तो आप सब सैंपल है सबके सामने। लेकिन अपनी स्थिति को, उसे आपको ऊंचा रखना है, उसे आपको इतना श्रेष्ठ रखना है जैसे कमल आसन पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को दिखाते हैं। और ये आप सब जानते ही हो कि कमल का अर्थ क्या है, न्यारा, डिटैच, कीचड़ की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं है, ہے کیچڑ کے اندر، ایسے ہی میری استھتی ہو کہ مجھے گرستی کی پروتی کی کوئی بھی بات اپنے میں پھنسائے نہیں، الجھائے نہیں، کہاں بھی میں اپنے کو دویدھا میں محسوس نہیں کروں، بہت ہلکا انوبھو کروں۔ بہت بابا نے جو ہمیں روحانی جیون کی موج دی ہے، روحانی جیون کا سکھ دیا ہے، اس میں رہوں۔ کہیں بھی کوئی بھی بات مجھے اپنے میں لگاؤ یا جھکاؤ ایسا نہ ہونے دے، کیونکہ ہماری پریت ایشور کے ساتھ ہے اور اسی میں ہی میرا بھی کلیان ہے، جو پروتی ہے اس کا بھی کلیان ہے اور ساری دنیا کا بھی کلیان ہے۔ کیونکہ اگر کہیں بھی ہم پھنستے ہیں یا شریمت کے انوسار نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی لگاؤ ہوتا ہے، ہاں بیلنس نہیں رہتا ہے، تو آپ کیونکہ گیانی ہو، سمجھدار ہو، ہر بات کو محسوس کرتے ہو، تبھی تو ہاں سوچتے ہو، کہتے بھی ہو کہ ایسا ہو گیا، تو نراشا بھی آ جاتی ہے، وہ بھی نہ آئے، اور اسی کے کارن سے کبھی کبھی سٹریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ پر بابا کے بچے ان باتوں سے پروتی میں رہتے صدا مکت رہنے چاہیے۔ ایسا ذرا سا بھی کہیں کچھ محسوس ہو یا لگتا ہے، دکھتا ہے، خود کو الرٹ کرو، اسی گھڑی اپنا علاج کرو۔ کون سا؟ سر درد ہوتا ہے تو علاج کرتے ہو نا، خود گولی کھاتے ہو یا ڈاکٹر کے جاتے ہو، کہیں بھی کچھ ہوتی ہے پرابلم، ہاں ایسے ہی میری اپنی اندر کی استھتی بہت اچھی، مضبوط، شکتیشالی، نیاری اور پیاری رہنی چاہیے۔ یہ ہے پروتی کی وتی، جو سوکشم ہے، اندر کی فیلنگس ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں۔ پر مانا پرائی، میری نہیں، الگ۔ تو میری وتی سبھی باہیے باتوں سے، پر کی باتوں سے، دوسروں کی باتوں سے، سارے وایو منڈل واتاورن سے اونچی رہے، ڈیٹیچ رہے، اس کے پربھاؤ میں نہ آئے۔ اب اس کے دو کارن ہوتے ہیں، کیونکہ پروتی میں ذمہ داری ملی ہے، وہ چھوڑنی نہیں ہے، اور اپنی ہی پروتی رچی ہوئی ہے، تو میں پن دھیرے دھیرے آ جاتا ہے، ذمہ داری کو سنبھالتے، اور کیونکہ اپنی ہی رچی ہوئی ہے تو میں پن کہاں کہاں آنے سے وہ استھتی اتنی اونچی نہیں بن پاتی۔ یہ ایک آتما کے اندر کئی جنموں سے، کوئی ابھی نہیں آیا، وہ کئی جنموں کا دے ابھیمان کی میں کا سنسکار پڑا ہوا ہے۔ اب وہ میری وتی سے نکل جائے، یہ چاہیے، اسے مجھے نکالنا ہے۔ اس کی ہی میں کچھ شارٹ میں آپ کو باتیں بتاؤں گی۔ परंतु उसे पहले मुझे अपने अंदर चेक करना होगा, खुद का निरीक्षण करना होगा कि ये कहां कहां आ जाता है, पता नहीं चलता। मोटे रूप से देखते ना, कहते हैं मेरे में मैंपन कहां रहा, मैं तो बाबा की ही तो हूं, मेरी तो अब किसी से कोई अटैचमेंट भी नहीं रही। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा हमें 100% संपूर्ण निर्विकारी बनाता है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसी प्रवृत्ति देता है, वैसा तैयार कर रहा है, तो हमें अपनी चेकिंग भी वैसी करनी होगी। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि मुझे समझ ही ना आ रहा हो। अब जैसे ख्याल आता है, देखो मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की इतनी पालना करती हूँ, कितना दिन रात हड्डियां लगाती हूँ, राइट बात है ये, नो डाउट, जागती भी हूँ, कोई घर का प्राणी नहीं जो दूसरे के लिए जागता हो, मैं इंतजार करती हूँ, लेट आते हैं, खाना बनाना है, खिलाना है, फिर भी मेरी इस घर में कोई पूछ नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे मुझे ध्यान नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं रखते, पति भी मेरी वैल्यू नहीं रखता, या पति सोचे पत्नी मेरी वैल्यू नहीं रखती है, आखिर तो मैं माँ लगती हूँ ना इन सब की, या माना सास हूँ, बहू है, बेटा कितना अच्छा है और बहू देखो क्या करती है, बेटे को भी बिगाड़ दिया जब से आई और सारा घर ही बिगड़ गया, मैं सास होते भी कुछ कह नहीं सकती हूँ, अपनी मनवा नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। या ख्याल आएगा मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, देखो पति मेरी कितनी महिमा करता है, और बहू है वो मुझे किचन में आने तक नहीं देती है, अब मैं क्या करूं, तो वो सास वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। या मेरा पति इतना बड़ा अफसर है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, मुझे भी उतना ही पूछा जाए, आखिर तो मैं इसकी पत्नी हूं, बाहर जाते हैं उसको सलाम ठोका जाता है, मुझे कोई सलाम नहीं करता, मेरी तरफ नजरें भी नहीं देखता। हमारे पास एक माता आई, उसका पति जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया, उसको यही अंदर फीलिंग आए कि मेरा पति, उसको तो सब हाथ जोड़ते हैं, मेरी तरफ भी ऐसे करके जरूर किया करें, आखिर तो मैं उसकी पत्नी और सारा कुछ तो मैं ही इसके लिए करती हूँ, इसको जितवाने में, इस पोजीशन में लाने में भी मैं ही भागीदार थी। तो डिप्रेशन में चली गई यही सोच सोच के, उसका पति समझ गया, अब वो दुविधा में आ गया कि मैं इसको साथ ले जाता हूँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं ले जाता हूँ तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। अब ऐसी ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी। आप में से कौन समझते हो कि हाँ ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें हैं, हाथ खड़ा करो, पीछे वाले भी, उनसे भी पूछा जा रहा है, आगे वाले सोच रहे कैसे करें हमारा वीडियो में ना आ जाए, हाँ अरे इसमें क्या, प्रवृत्ति की तो बातें हैं ये, हाँ घर संसार, लौकिक संसार, ठीक है। तो ये सूक्ष्म में हमारी ये देह अभिमान की मैं होती है जो हमारी स्थिति को ऊंचा नहीं बनने देती, न्यारा नहीं बनने देती, हमारी वृत्ति में एंटर कर जाती है बातें, लेकिन ये है पर, पराई बातें, दूसरे से आई हुई, या आपकी अपनी है ये, आपने दूसरे को देखा तब तो अंदर आई ना, वो दूसरा कोई भी हो, चाहे ये शरीर भी है, मैं शरीर हूं क्या, बोलो मैं कौन हूं। तो अगर देह के भान से भी आई, या देह के जुड़े हुए संबंध से भी आई, या किसी वस्तु पदार्थ से भी आई, तो हुई तो देह अभिमान की मैं ना, तो मेरी वृत्ति में उसकी एंट्री करने से स्थिति उतनी ऊंची नहीं हो पाती है, तो प्रवृत्ति कैसी लगेगी और कैसी बनेगी, सोचने की बात है ना ये थोड़ी सी। तो इस गहराई में जाकर के अपने को चेक करो कि मेरे ये फीलिंग्स से वृत्ति में इन बातों को रखने से मैं कैसे इतनी ऊंची प्रवृत्ति की मालिक बन सकती हूँ, श्री लक्ष्मी पद की मालिक बन सकती हूँ। तो ये देह अभिमान की मैं होती है, कभी कभी दिल शिकस्त की मैं भी आ जाती है। जरूरी नहीं कि वो कोई किसी विकार का रूप ले, अहंकार का या मोह का। हाँ, इसमें मोह भी आता है अंदर, जो ये बातें हमने सुनाई, मोह वश भी क्रिएट हो जाती है, कहीं कहीं कोई इच्छा या लोभ वश भी आ जाती है। और भी ढेर सारी हैं, अब सुनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोचना। दिल शिकस्त की भी आ जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, बाबा ने तो मुझे बता दिया ऐसा करो, पर मैं वैसा कर नहीं सकती, मेरा वातावरण ही ऐसा है, मेरे तो पति ऐसा है, बच्चे ही ऐसे हैं, सुनते ही कहाँ है, बहू ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, खोटा है, मैं खुद ही ऐसी हूँ, मैं तो बचपन से ही कमजोर थी, अच्छे नंबरों से पास भी नहीं होती थी, स्कूल में भी मैं खेला पेला नहीं करा करती थी। ऐसे ऐसे सोच के निराश हो जाते हैं। अभी भी मैं मेहनत करती हूँ, कोई अप्रिशिएट ही कहाँ करता है, दूसरे का नाम लेंगे मेरा तो नाम भी नहीं लेते हैं, या सेंटर पे भी देखो मेरे को बहन जी ने नहीं कहा, उसको कह दिया, क्या क्या ख्याल चल पड़ते हैं, मैं भी तो ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी तो ये गुण है। तो ये दोनों रूप से कभी अंदर वृत्ति में आ जाती है। तो ये सारी सोच भी पर है, इसको अपने अंदर नहीं लाओ, ये भी बाहर से आई हुई बातें हैं। क्योंकि आपने जो देखा, जो सुना, जो संपर्क में आया, व्यवहार में आया, चाहे कोई 24 घंटे आपके साथ रहता है या कभी कभी रहता है, हर आत्मा का रोल तो अपना ही है ना, एक जैसा तो किसका हो नहीं सकता है। ये बातों का राज तो बाबा ने हमें सुना ही दिया है कि इस कल्प वृक्ष में ही देखो तो हर टहनी हर पत्ता अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ उस वृक्ष और बीज और जड़ के साथ ही है। तो ये भी निराशा हमारी वृत्ति में आने से स्थिति ऐसी ऊंची नहीं बन पाती है। तो प्यारा बाबा हमें इन सारी बातों से ऊपर उठाता है। बच्चे, ये पुराने 63 जन्मों की जो आत्मा में आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया, ये उसी अनुसार आप फिर से सोच रही हो। अभी तो मैंने आपको त्रिनेत्री बना दिया, हर बात की समझ, आपका भविष्य और आपका इतना ऊंचा शेष लक्ष्य और उसकी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, तो उस अनुसार आप अपने सोच को नहीं रखो। दूसरा क्या होता है कि कई बातों में मेरापन आ जाता है, हम उसे अधिकार समझने लगते हैं, तो वृत्ति में वो आने से वो इतना अंदर चले जाते हैं उसके कि पर नहीं रह पाता, भूल जाते हैं कि ये तो सब कुछ अलग है, ये चीजें, ये इच्छाएं, ये प्राप्तियां, संसारिक, विनाशी, थोड़े टाइम की, उसको मिल गई मुझको नहीं मिल पाई, कोई हर्जा नहीं, बाबा मुझे क्या दे रहा है, मेरे जीवन की प्राप्तियां क्या हैं, जो मैंने पाई है वो इनको पता लगना चाहिए, ये सोच रखना है। बहुत छोटी छोटी बातों में भी कई बार फंस जाते हैं, लेकिन मैं उससे डिटैच रहूं। हमने सुनाई थी ये बात, शायद आपने सुनी हो या नहीं, प्रैक्टिकल बात है। एक माता आती थी, उसकी बहू कभी कभी आती थी, थोड़ा बहुत ज्ञान समझती थी, माता सास होने के नाते से उसको समझाती रहती थी और सेंटर पे कभी कभी ले आती थी, ताकि ये धीरे धीरे बाबा की बच्ची बन सके। पर उसका एक संस्कार था बहू का कि उसको साड़ियों का बड़ा शौक था। हर एक के भिन्न भिन्न शौक होते हैं, किसको ज्वेलरी का बहुत ज्यादा होता है, किसको घर सजाने का बहुत ज्यादा होता है, किसको वैरायटी खाना बनाने का बहुत होता है, किसको मार्केटिंग करने का बहुत होता है, किसको नए नए डिजाइन निकालने का बहुत होता है। आप में भी कई विशेषताएं होंगी। तो वो उसको ये रहता था कि भारत में कोई नई साड़ी, बहुत अच्छी रॉयल फैमिली थी वो, तो वो मेरे पास होनी चाहिए। कहीं भी जाती थी वो, मद्रास गई, महाराष्ट्र गई, पंजाब गई, अपने शौक की वो साड़ी खरीद के जरूर लाती थी। अनायास जब वो 45 की एज में आई तो उसको डॉक्टर ने जो बीमारी बताई वो थोड़े दिन बस उसकी चलने वाली स्थिति थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो जो उसकी सांस थी वो बड़ी परेशान, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही बहू कहे उसकी इतनी सारी साड़ियां ऐसी थी अलमीरा में जो उसने टच भी नहीं की थी, सिर्फ खरीद के लाके रखी हुई थी, उसको पहनने का टर्न ही नहीं आया था। तो उसके दिमाग में, क्योंकि वो संस्कार पक्का था, इतना बैठ गया, वो हर बार में जैसे उसकी सास उसके सामने आए कहे मम्मी मेरी वो साड़ियां कौन पहनेगा, एक ही बात, क्योंकि उसको पता लग गया मैं थोड़े ही दिन जीने वाली हूं। तो उसकी सास भी बिचारी बहुत हैरान हो गई कि मैं इसको क्या जवाब दूं। मैं कहूं कोई नहीं पहनेगा तो भी इसको फील होगा, मैं कहूंगी फलाना पहनेगा तो भी इसको फील होगा कि मेरी पहनने के लिए आई हुई और वो इतनी महंगी महंगी 10-10 हजार की साड़ियां। तो वो हमारे पास सेंटर पर आई और सास ने कहा बहन जी मैं तो बहुत उलझ गई हूं। वो खुद भी ज्ञानी थी, पक्की थी, तो उसकी मनोस्थिति खराब नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो माता उलझ गई। कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको क्या जवाब दूं। कहा आप चलो इसको दृष्टि दो, इससे ये तकलीफ भोगे कोई उससे मुक्त तो हो जाए, क्योंकि इतने दिन भी इसके तकलीफ के हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इसकी मनसा ठीक रहे, इसको साड़ियां भूल जाएं और इसको बाबा याद रहे। अब ये प्रवृत्ति की कहानी है सारी, देखो है छोटी सी बात लेकिन ये कितनी बड़ी हो गई, जो सारे घर के प्राणी उसी ही बात में उलझ गए और टेंशन में आ गए, सारा माहौल टेंशन का बन गया। जबकि बहू को भी ज्ञान था लेकिन इतना नहीं था, इतनी धारणा में वो नहीं थी। तो ऐसी कई बातें आती हैं। वो तो फिर हम गए, दृष्टि दी, बाबा को याद किया, बाबा ने हमें जो सिखाया है, जो हम हमेशा सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, और डॉक्टर्स ने तो कहा ही था कि कुछ दिन में जाएगी। फिर हमने कहा आप इसको बीच बीच में दृष्टि दो, योग के गीत लगाए रखो, बाबा का चित्र सामने रखो, इसका ध्यान उधर बटाओ, वो सब कुछ किया। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम कहीं कहीं वस्तु पदार्थ प्रॉपर्टी के चक्कर, मेरे पति को नहीं मिला, जेठ को मिल गया, देवर को नहीं मिला, हमें इतना मिला, इसमें बहुत उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति आपकी अब कौन सी है, कलयुगी प्रवृत्ति नहीं है। भले आपके परिवार में आप अकेली भी चलती हो, अगर बड़े मकान में एक दिया भी जगा दिया जाता है तो रोशनी हो जाती है। कितने कितने ऐसे मिसाल आते हैं। तो आप वो घर में दिया हो जो जगमगा रहा है, जिसकी रोशनी भगवान ने स्वयं ज्ञान और योग से प्रज्वलित की है, आपकी आत्मा में वो शक्तियां भरी हैं, आपको त्रिनेत्री बनाया, हर बात से सुजाग किया है, कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने आपको बताई ना हो। तो आप उसी अनुसार अपने मन और बुद्धि की स्थिति को रखो, अपनी वृत्ति में उन बातों को आने नहीं दो। बात आएगी, समस्या आएगी, भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं आपसे इच्छाएं भी रखेंगी, आपको ही कहेंगे, आप दोषी नहीं भी होंगे तो भी दोष भी आप पे लगा देंगे। हैरान नहीं होना, अपने मन को परेशान नहीं करना। ये आत्मा नहीं कहा ना, लेकिन मुझे परमात्मा क्या कह रहा है? कोई भी बात आई किसने कही? एक आत्मा नहीं कही ना, नहीं अच्छी है तो हर्जा नहीं। परमात्मा तो आपको वरदान दे रहा है ना, परमात्मा तो आपकी आत्मा को शक्तियां दे रहा है ना, उसने तो जिसमें आपकी भलाई है, जिसमें आपका भाग्य है, बाबा को इतना प्यार है आपके साथ कि मेरी बच्ची को सुख मिलना चाहिए, तो कहता है मेरे साथ अपना योग रख, देह के संबंधी भूल जा। तो क्या मैंने अपनी वृत्ति को ऐसा बनाया, या मैं उन्हीं को ही याद कर करके दुखी हो रही और अपनी स्थिति को कितना नीचा ले आई? सोचो जरा। तो उससे में बह नहीं जाओ। कई बार वृत्ति में इतना अंदर भर लेते हैं कि इतना बह जाते हैं कि दिल में वो बातें बिठा लेते हैं। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ ना, अपनी टीचर बहन को भी जाके माताएं सुनाएंगी, रो रो के भी सुनाएंगी, बहन जी आपने समझ तो दे दी, बाबा का ज्ञान बड़ा अच्छा है, पर देखो मेरी हालत इन्होंने क्या कर दी है। अरे उन्होंने क्या कर दी, तुमने खुद कर ली। बाबा ने आपकी हालत कैसी बनाई है बताओ, फिर उस हालत में रहो ना। कितनी ऊंची बनाई है, कितनी श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं दुखी आत्मा रहो, सुख के वरदान रोज दिए। बाबा तो कहता है रोना भी नहीं है, कहता है भले रो, रोना भी नहीं है। बाहर से तो क्या, अंदर से भी नहीं रोना है ना। तो मुझे ये समझ के चलना है, अपने संकल्प को उससे बिल्कुल अलग। क्या मुझे श्रीमत मिली है? अब मैं आपको सार में चार बातें बताती हूं कि आप कैसे स्थिति को ऊंचा रखो, न्यारा और प्यारा रखो, पर के प्रभाव में नहीं आओ। पहली बात जो बाप दादा ने हमें कई बार समझाई है कि मैं निमित्त आत्मा हूं, मैं मालिक नहीं हूं। जो आ जाता है ना, वो पहले मैं सुना चुकी हूं सारी बातें, मां हूं, सास हूं, ये हूं, वो हूं। मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूं, चाहे मेरी प्रवृत्ति कैसी भी है, वो मेरी नहीं है, बाबा की है। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे गहने नहीं, मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूं। एक माता का बेटा ठीक नहीं होता था, बार बार कहे मेरा बेटा, योग लगाओ मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने कहा किसने कहा ये तेरा बेटा है? वो तो बेचारी सोच में ही पड़ गई और वो होने लगी। मैंने कहा माता ध्यान से सुन, ये किसने कहा तेरा बेटा है? तो उसको थोड़ी अलर्टनेस आई। मैंने कहा पहले तो बुद्धि में ये लाओ, ये बाबा का बच्चा है, रिक्वेस्ट करती हो बाबा से, पुकार कर रही हो बाबा की, इसको ठीक कर दो, मांग रही हो बाबा से और कह रही हो मेरा। फिर वो कहेगा तू ही ठीक कर, और तुम तो कर ही रही हो योग, ऐसे तो नहीं कर रही हो, लेकिन वो योग तेरा बाबा से कम बेटे से ज्यादा लग रहा है। राइट है ये, समझा इस बात को? बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, हाँ माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, हम उस समस्या से अपनी स्थिति को जोड़ लेते हैं, उस व्यक्ति से अपनी मनसा को जोड़ लेते हैं और कहते हैं हम बाबा को याद कर रहे हैं। तो ये हमारी वृत्ति में पक्का रहे, ये बच्चे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं, ये प्रॉपर्टी बाबा मालिक है, मैं मालिक नहीं, मैं निमित्त आत्मा हूं। बाबा ने आपको निमित्त रखा है, निमित्त तो समझते हो ना, एक बिजनेसमैन मालिक होता है, वो उसको संभालने के लिए मैनेजर रख देता है, मैनेजर ध्यान जरूर देता है लेकिन घाटे और फायदे के उसमें प्रभावित नहीं होता, वो मालिक का सोच चलता है, घाटा क्यों हो रहा है, फायदा ठीक होना चाहिए, और फायदा अच्छा हो रहा है तो और क्या करना चाहिए, ये मालिक की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूं, ये अंदर कूट कूट के भरो, जब देखते हो ना तो मोह जाग जाता है। कल भी हमने सुनाया था ना, संबंधी मिलेगा मुंह में पानी आ जाता है, आई मेरी बहन इतने दिन बाद आई, ओहो है ना, कोई भी, तो मैं निमित्त आत्मा हूं। निमित्त हो आप सब, बोलो, सभी निमित्त हो, भाई भी निमित्त हो ना, भले कमाते हो, आपकी कमाई से ही घर चलता है, हा? लेकिन कमाई कराने वाला कौन है? हाँ बाबा, मैं निमित्त हूं। दूसरी बात पक्की करो, करण करावन हार कौन है, ये छाप लो बुद्धि में, करण करावन हार कौन है। भक्ति में तो ज्ञान नहीं होता है, पहचान भी नहीं भगवान की, तो कहते तू ही कराता है, फिर साथ में कह देते तू ही करता है ना। अज्ञानता में भी देखो इतना हाँ फिर भी रहता है, भले उसका सही अर्थ नहीं पता तो उपयोग भी पूरा सही नहीं निकल पाता, मुख से सिर्फ कह देते हैं, पर आप तो बाबा के ज्ञानवान बच्चे, समझदार बच्चे, दूरंदेशी और विशाल बुद्धि आत्माएं हो सभी, कि करण करावन हार कौन है, बोलो कौन है, फिर बोलो, पक्का रहता है ये रहे, ठीक है। बाबा कराता है, वही कराने वाला है, मैं भी करने वाली नहीं, अगर मैं निमित्त भी हूं तो वो मैं आत्मा हूं, ये नहीं कि मैं मालकिन हूं, मैं आत्मा हूं, करने वाली भी हूं, बाबा ने आपको रखा, प्रवृत्ति संभालो, सेवा करो, जग का कल्याण करो, तो वो भी करण हार मैं आत्मा हूं, ये याद रहे। बाबा भी अगर आपसे कराता है तो आप करने वाली कौन हो, वो भी देह अभिमान की, बाबा कहते हैं उसमें मनसा में स्थिति में न रहे फीलिंग, वो भी मैं निमित्त करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा, एक शुद्ध आत्मा जिसको भगवान ने निमित्त बनाया, एक कल्याणी आत्मा, वह हूं, शिव की शक्ति हूं, उससे शक्ति लेके कर रही हूं, लेकिन करा वो रहा है گائیڈنس مجھے اس کی مل رہی ہے، روز مجھے اس کی شریمت ملتی ہے، ہر کرم کی شریمت ملتی ہے، تو میں اپنے پر بوجھ بھی نہ سمجھوں۔ پرورتی میں کئی باتوں کا بوجھ سر پہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کس کا مانو، کس کا نہیں مانو، اس کا مانو، اس کا مانو، وہ نہیں سنتا، یہ نہیں سنتا، یا بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس میں لگاؤ میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی میرا، وہ بھی میں، وارے میں تو یہ، وہ دوسری الٹی والی ہو جاتی ہے، تو پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ تو کراون ہار بابا ہے، یہ پرورتی بھی اس کی ہے، یہ رچنا بھی اس کی ہے، یہ یاد رہے۔ اور تیسری بات، میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں، اس سومان میں اپنے کو پکا کرو، کمزور نہیں بنو، میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں۔ تو کبھی آپ نراش نہیں ہوں گے، کبھی آپ الجھیں گے نہیں، کنفیوز نہیں ہوں گے، ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے، دوسروں کو بھی آپ سے بل ملے گا، دوسرے بھی آپ کے سہیوگ سے خوش ہوں گے، آپ سہیوگ دے سکیں گے، یوگ کا بھی سہیوگ دے سکیں گے، وایو منڈل کو بھی پوزیٹیو بنا سکیں گے، گھر کا واتاورن خوشحال بنا سکیں گے، کیونکہ میں سرو شکتیوان کی سنتان ہوں، کمزور نہیں، ماسٹر سرو شکتیوان ہوں، یہ یاد رکھو۔ اور چوتھی بات، ہمیشہ شدھ سنکلپوں میں رمن کرو، ویرتھ کو ستھان نہیں دو، جس میں وشیش روپ سے بیتی باتوں کو کبھی سامنے نہیں لاؤ۔ پرورتی میں سب سے زیادہ آج کے سمے میں ستھتی کو نیچے لانے والی پچھلی باتیں ہیں، بیتی باتیں۔ کتنی ساری پریواروں میں بیتی باتوں کے کارن جھگڑے، فساد اور جھمیلے ہیں۔ آپ کل جو بات ہوئی اسے بھی دل پر مت رکھو، شمع کے ساگر بنو، رحم کے ساگر بنو، بیتی کو بھلا دو۔ سٹاپ، بس آج میرا کمائی کا ٹائم ہے، میرا ایک ایک پل جمع کرنے کا ٹائم ہے، کوئی خاص ویکتی کے پاس بھی دن فکس ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو ملنا ہے، یا بزنس میں اتنی آپ کی ڈیلنگز ہیں، وہ کہتے ہیں آج میرے سے اور باتیں مت کرنا، آج مجھے کچھ مت کہنا، ہم تو بابا کے اتنے وشیش بھاگیشالی بچے ہیں، روز ہی ہمارا جمع کا کھاتا بنتا ہے، پنیہ کا کھاتا بنتا ہے، ہر پل ہر سیکنڈ ہم اپنے لیے کمائی کر رہے ہیں، تو ویرتھ کو ستھان مت دو، اور اس کے لیے بیتی کو فل سٹاپ لگاؤ۔ جو آج میرے سامنے درشے ہے اسی کو سامنے رکھ کے، جو مجھے بابا نے جیسی دن چریا دی ہے اسی انوسار میں اس کو چلاؤں، آپ بہت باتوں سے سیف ہو جاؤ گے، اور آپ کی منسا ورتی بہت ہلکی، شدھ، شکتیشالی رہے گی آٹومیٹیکلی۔ ایک آپ کو بابا جیسے چلا رہا ہے ایسے محسوس ہوگا، کراون ہار کرا رہا ہے، سہج۔ بابا آپ کو یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے بچے بہت محنت کریں یا تھک جائیں، نہیں، بابا تو کہتا ہے میری محبت میں رہو تو محنت ہے ہی نہیں، اسی میں سدا جھولتے رہو. اسی لیے تو دکھاتے ہیں آج جنماشٹمی کا دن ہے, رادھا کیسے سری کرشن کی محبت میں تھی, تو اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا, اسے تو سانجھ اور سویرا بھی انتر نہیں لگتا تھا. تو آپ سب بابا کے پیار میں کھوئی ہوئی بابا کی بھاگیہ شالی گوپیکائیں ہو, سچی سچی گوپیکائیں ہو. تو پرورتی آپ کی کتنی ابھی سے ہی ایسے لگے جیسے ستیوگی پرورتی ہے, ایسی میری اپنی سوچ رہے گی, میری اپنی فیلنگز رہیں گی, تو پرورتی کا ویسا ہی پربھا دکھائی دے گا. آٹومیٹیکلی وایو منڈل واتاورن ویسا ہی بن جاتا ہے. تو سدا میرا سو درشن چلے, سو چنتن چلے اور شریمت سامنے رہے. تو ان باتوں پر ہم دھیان دیتے ہیں اور یہ نیچرل آپ کے اندر آ رہی ہے, اسی کا ہی آپ کو اٹینشن رکھ کے اس کی پرسنٹیج کو بڑھاتے جانا ہے. بس ایسے نہیں کہ آپ کے اندر ہے نہیں یا آپ کرتے نہیں ہو, کرتے ہو پر اس کو اب فل ریتی سے. ہر چیز اپنی پرفیکشن کی اس پر اچھی لگتی ہے نا, ایسے اس کو اپنے اندر فل ریتی سے لاتے جاؤ تو آپ کی استھتی کتنی اچھی, اونچی, شریشٹھ, شکتیشالی اور ہو جائے گی, اور پرورتی آپ کی اتنی اچھی, سکھدائی اور ستیوگی ہو جائے گی جو ابھی سے ہی لگے گا سورگ تو دھرا پر آ ہی گیا. اوم شانتی.